नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। लगता है भारत सरकार इसी लाइन पर चल रही है कि एक एक याचिका के सहारे जानकारी को सामने आने से रोका जाए या देरी की जाए ताकि जनता को पता ना चले। आखिर इसमें कितना बड़ा घोटाला हो सकता है कि सरकार नहीं बताने के लिए इतना प्रयास कर रही है। आज उद्योग जगत की संस्था फिक्की को जो डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जो डांट पड़ी है कि उसके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पड़ी डांट अब गुलाब जामुन लगने लगी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के सदस्य जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने किसी की कोई दलील नहीं चल पा रही थी, फिर भी डांट खाने रोज ये नए नए संगठन को आगे कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी हुआ है उसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रोकने के लिए कौन लगा है, किसे डर है कि जनता को पता ना चले। सारी शक्ति लगा दी गई है कि बॉन्ड के बहाने जो लूट हुई है उसकी जानकारी घर घर तक नहीं पहुंचे। अब जनता को भी अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी कि वह एक एक जानकारी जमा करे और घर घर पहुंचाए। हमारा ही नहीं, उन सभी का वीडियो देखिए जो इस घोटाले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के सबसे बड़े घोटाले को गोदी मीडिया गायब कर रहा है। कोर्ट के आदेश से बाहर ना आ सके तो कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं ताकि कुछ दिन और टल जाए, जहां है मामला वहीं अटक जाए। मगर कोर्ट को यह बात समझ आ गई है कि भारत के हित में इस घोटाले का भंडाफोड़ सबसे जरूरी है। यह हमारा पहला वीडियो है आज का, इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, आज ही आएगा। देखते रहिए और पड़ोसियों को भी दिखाते रहिए। दिनेश कुमार खरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, 10 महीने का सेवा विस्तार मिला है। यह व्यक्ति बैंक के करोड़ों ग्राहकों और लाखों कर्मचारियों को शर्मसार किए जा रहा है। इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ने कायदे से समझा दिया कि फैसले में क्या लिखा है, क्या करना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्टेट बैंक का रुख देखकर लगता है कि आप कुछ खास डिटेल के बारे में बताएं, हम वही बताएंगे, मगर ये सही नहीं है। स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए। बैंक के चेयरमैन के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि वे फैसले को लागू करें, कहें कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी सार्वजनिक करेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जानकारी देनी है तो इसका मतलब है कि जो गुप्त भी है वह भी बतानी है। क्या किसी चेयरमैन को यह बताना पड़ेगा कोर्ट का आदेश क्या है? यह हालत हो गई है इस चेयरमैन और बैंक की, यह किसकी सेवा के लिए किया जा रहा है? दिनेश कुमार खरा क्या सेवा विस्तार का कर्ज चुका रहे हैं? क्या बैंक का देश की जनता के प्रति, अदालत के फैसले के प्रति कोई कर्ज नहीं, कर्तव्य नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून को चोरी का अड्डा बनाने के लिए संविधान में जो भी संशोधन किए गए थे उसे भी रद्द कर दिया है। तब फिर स्टेट बैंक चुपचाप सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बता रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाएगा? इस बार लगता है कि वकील हरीश सालवे को आगे करने के बाद भी उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जब कोर्ट ने कह दिया कि सारी जानकारी, मतलब जो गुप्त भी है, उसे सार्वजनिक करनी है, तो बार बार स्टेट बैंक ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? किसे बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है? या तो जनता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कि हमने आपको धर्म की घुट्टी पिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया है और अब आपको कुछ भी पता नहीं चलने देंगे और ना हमने आपको जानने लायक, समझने लायक छोड़ा है। जब यह कानून रद्द हो गया, इसके लिए किए गए सारे संशोधन रद्द हो गए, तब यह सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनियां और राजनीतिक दल खुद से सारी जानकारी सड़क पर क्यों नहीं लाकर फेंक देती हैं? क्यों इसे मैनेज करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक कोड देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के सदस्यों की सख्ती आज देखने लायक थी। आम तौर पर मीडिया इसे डांट और फटकार के रूप में ही लिखता है। हम भी डांट का इस्तेमाल करते हुए बैंक को पड़ी डांट की गिनती कर रहे हैं, ताकि पता चले कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को छिपाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है। यही है राम राज्य का नाम लेकर राज करने वालों की ईमानदारी का नमूना। डांट नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने स्टेट बैंक को सारी जानकारी देने के लिए कहा है, इसमें बॉन्ड के पीछे जो गुप्त नंबर होता है वह भी शामिल है। स्टेट बैंक नहीं तय कर सकता कि कौन सी जानकारी देनी है कौन सी जानकारी नहीं देनी है। हम मानकर चलते हैं कि बैंक खुलकर जानकारी देगा, कोर्ट के समक्ष पारदर्शिता से पेश होगा, कोर्ट के साथ भेदभाव नहीं करेगा। डांट नंबर दो, स्टेट बैंक क्या यह कहना चाहता है कि आप ही बताइए क्या बताना है, हम वही बताएंगे, यह सही नहीं है। डांट नंबर तीन, जब हम कहते हैं कि सारी जानकारी देनी है तो इसमें गुप्त डेटा भी शामिल है। अभी स्टेट बैंक को पड़ी डांट खत्म नहीं हुई है और फिक्की को मिली डांट पर तो हम आए भी नहीं हैं। बैंक के वकील सालवे ने कहा कि क्या हम बता सकते हैं कि बैंक ने आदेश को कैसे समझा है, हम सारी बातें रखना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी जानकारी है बॉन्ड को लेकर वो सब बताएं। यह हो गई डांट नंबर चार। अदालतें डांट या फटकार उस तरह से नहीं लगाती, उनके बोलने का वैसे कायदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत खराब कर दी। कोई बैंक बार बार जाए और कोर्ट वही बात बार बार दोहराए तो इसे डांट ही कहना चाहिए। जैसे ही हरीश सालवे ने कहा कि अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग से कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया है उसकी सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में दी जाए, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर फटकार लगाई और कहा कि हम ये समझते हैं कि आप राजनीतिक दलों की तरफ से पैरवी नहीं कर रहे, इसे गिनते हैं डांट नंबर पांच। इस बिंदु को ठीक से समझिए। हरीश सालवे फैसला पढ़ने लगे और कहने लगे कि हम यह समझे कि आपने कहा है कि जानकारी सील बंद लिफाफे में रखनी है और राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड की डिटेल से क्या करना है, पार्टियां अपने आप बता देंगी कि किसने पैसा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कह दिया आप राजनीतिक दल के वकील हैं या राज्य की ओर से हैं, यानी सरकार की ओर से, स्टेट की तरफ से। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी जानकारी है आपको देनी है। अब आते हैं अगली डांट पर, यह डांट कुछ ज्यादा खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैंक को बॉन्ड नंबर बताना होगा, यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बैंक को हलफनामा लिखकर देना होगा कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई। वकील सालवे ने कह दिया कि हम ऐसा ही करेंगे, बैंक कोई जानकारी नहीं छिपाएगा। हरीश सालवे अनुभवी और बड़े वकील हैं, लेकिन इतने कमजोर केस की पैरवी जब बड़े वकील भी करते हैं तो उनकी दलीलें सुनने में तो अच्छी लग सकती हैं मगर साबित कमजोर ही होती हैं। हरीश सालवे की दलील से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि अनुभवी वकील के पास मजबूत तर्क हैं। कोर्ट के जवाब के सामने उनकी दलीलें स्कूली बच्चे के बहाने की तरह नजर आ रही थीं। सुनिए इस दलील को। हरीश सालवे ने कहा कि मीडिया हमारे पीछे पड़ा है कि अवमानना की कार्रवाई हो जाएगी, बैंक को देख लेंगे, मतदाताओं को पता चलना एक बात है लेकिन अगर जांच को लेकर जनहित याचिकाएं दायर हो जाएं, इसकी जांच करो उसकी जांच करो, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के फैसले का ऐसा मकसद भी है। बताइए मीडिया क्या कहेगा, कोर्ट में केस हो जाएगा, इसका डर सता रहा है। अगर किसी कंपनी को चंदा देने के बदले लाखों करोड़ों का धंधा मिला है, कोई कंपनी इसी साल बनती है और चंद महीने में करोड़ों का चंदा देती है, उसका मुनाफा भी उतना नहीं, तो जांच होनी चाहिए, जनहित याचिका तो दायर होनी चाहिए। जब सरकार खुद से जांच नहीं करेगी तो लोग कोर्ट के पास जाएंगे। जाहिर है यह कमजोर दलील थी और कोर्ट के सामने इसे टिकना भी नहीं था। कोर्ट में जो हालत थी उसे देखकर लगता है कि अब सरकार पब्लिक के बीच कहीं रोने ना लग जाए कि किसी तरह बॉन्ड की रिपोर्ट को गायब कीजिए, आप लोग प्लीज कोई भी खबर मत पढ़िए, हम लोग पकड़ा जाएंगे धरा जाएंगे, कहीं छपा हुआ देखिए तो मत देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग धरा जाएंगे। ये लेवल है क्या इस सरकार का? सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को पता होना चाहिए कि पब्लिक में किस तरह से अदालत का फैसला चल रहा है, जजों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि बाहर कैसी बातें हो रही हैं, विच हंटिंग शुरू हो गई है। सरकार के लेवल पर नहीं मगर दूसरे लेवल पर जो लोग कोर्ट के सामने हैं वो प्रेस में इंटरव्यू दे रहे हैं और कोर्ट को शर्मिंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट भी चल रही है जिनका मकसद शर्मिंदा करना है। तथ्यों को घुमा फिराकर किसी भी तरह की पोस्ट चलाई जा रही है, जैसे कोई कह दे कि रोहतगी ने इतना पैसा दिया, इसका एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या बेंच इस पर कोई आदेश देने पर विचार करेगी? तो क्या यह आदेश मांगने का प्रयास हो रहा था कि इसके कवरेज पर, इसके कवरेज के बहाने तरह तरह के सवालों के उठाने पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा दे? कमाल है। इस वीडियो को चार चार बार देखिए, एक एक तर्क को ठीक से देखिए और याद कर लीजिए कि कैसे कैसे बहाने बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, उससे सरकार को इतनी घबराहट है, कंपनियों को घबराहट है। काम ही ऐसा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा? कोर्ट को शर्मिंदा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, फिक्की कर रहा है जो कोर्ट से कह रहा है कि जानकारी सामने ना आए, जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है कि सभी जानकारी सार्वजनिक हो, फिर भी ये चले जा रहे हैं कि जानकारी सामने आने मत दीजिए। इसलिए यह डांट नंबर 7 है। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एक संस्थान के रूप में हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होते। हमारा एक ही मकसद है, डिस्क्लोजर। हम कानून के बनाए नियमों के आधार पर चलते हैं। ऐसी ऐसी डांट पड़ी है आज स्टेट बैंक को। चुनाव आयोग जब कहता है कि उसका एक ही सिद्धांत है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, तो फिर चुनावी चंदे से जुड़े फैसले को लागू करने में इतनी अड़चने क्यों हैं? देरी क्यों हो रही है? यह इस चुनाव की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, सबसे बड़ा घोटाला है। काश अदालत देखती कि सॉलिसिटर जनरल ने जो कोर्ट में कहा है वो कितना सही है। अदालत अखबारें नहीं पढ़ सकती हैं। हिंदी अखबारों में बॉन्ड की रिपोर्ट खाना पूर्ति की तरह छपी है। एक अखबार को छोड़कर कहीं भी पूरी डिटेल नहीं जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, द वायर और हिंदू में छप रही है। इसलिए बॉन्ड के यूनिक नंबर का सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है। आप समझिए इस क्रोनोलॉजी को। याचिका याचिका के खेल से जानकारियों को टाला जा रहा है, रोका जा रहा है। एक दिन ना सही, दो दिन ही सही, ताकि बहस और सुनवाई में कुछ दिन और निकल जाए और भारत की जनता को पता ना चले कि कितना बड़ा घोटाला हो गया। गोदी मीडिया का बड़ा हिस्सा इसे रूटीन की खबर बनाकर गायब कर चुका है। कई अखबारों में तो खबर का एंगल ही कुछ और है और कई जगहों पर असली खबरें गायब हैं। अब अगर जनता तक इस बात को पहुंचाना है तो मेरी नजर में एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग आदेश दे कि बॉन्ड से संबंधित कोर्ट के फैसले को अखबारों में विस्तार से प्रकाशित किया जाए, किन किन कंपनियों ने किसे कितना चंदा दिया है इसे भी प्रकाशित किया जाए और इसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाए। 2014 के पहले का भारत होता और यही रिपोर्ट होती तो सारे चैनल एक एक जानकारी पर चीख रहे होते और नेशन वांट्स टू नो का नारा लगा रहे होते, मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांग रहे होते। लेकिन अब तो सवाल ही गायब है और सवाल ही बदल दिया गया है। अब आते हैं फिक्की और एसोचैम की याचिका पर। फिक्की के 2.5 लाख सदस्य हैं, एसोचैम के 4.5 लाख। कंपनियां और उद्योग जगत के ही लोग इससे जुड़ते हैं। आज इनकी तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन लेकर पहुंच गए इस गुजारिश के साथ कि कंपनियों के नाम सार्वजनिक ना हो। फिक्की और एसोचैम की तरफ से अनुभवी और बड़े वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने फिक्की और एसोचैम की तरफ से आवेदन दायर किया है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया, हमारे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं है। रोहतगी ने कहा कि नंबर देने के मामले को टाल दीजिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे पास तब आए हैं जब फैसला दिया जा चुका है, हम आपको नहीं सुन सकते। यह डांट नंबर 8 हुआ। बताइए, फैसला आ चुका है, 15 फरवरी को आया है, एक महीने बाद 18 मार्च को उद्योगों की संस्था कोर्ट जाती है, नाम ना बताएं, कई कंपनियों के नाम छप चुके हैं, पहले लगा नहीं इन्हें कि इस मामले में कोर्ट में जाना चाहिए, बस जब नाम आने लगा, खुद कागज दिखाने की बारी आई तो कोर्ट पहुंच गए। संदेह के नाम पर नागरिकों से कागज मांगने की धमकी दी गई, उन्हें सताया गया, असुरक्षित महसूस कराया गया, अपमानित किया गया। लेकिन जब इनके कारनामों पर संदेह होता है तो कागज नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। यह है हमारी कंपनियां और राजनीतिक दल। खुद से गई थी या सरकार ने ठेल कर भेजा था, इसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। जस्टिस बी आर गवई ने कहा, पूरी दुनिया को पता है कि सुनवाई चल रही है, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रियायत नहीं दे सकते। व्हाट्स सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर, मतलब जो एक के लिए है वो सब के लिए है। आप इसे डांट नंबर 8 या 9 जो मन में आए गिन लीजिए, मगर हाल देखिए। मामला तब गंभीर हो गया जब वकील मैथ्यू नेंदुपारा ने कह दिया पूरा फैसला नागरिकों के नाम पर दे दिया गया। तब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम पर ना चिल्लाएं, आप आवेदन दायर करें, हम आपको नहीं सुन रहे हैं। तब भी वकील नेंदुपारा नहीं रुके। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कह दिया, क्या आप अवमानना का नोटिस चाहते हैं? मुकुल रोहतगी का आवेदन खारिज हो गया। एक तरफ उद्योगों की संस्था याचिका में मांग कर रही थी कि जानकारी साझा ना हो, वहीं भारत की एक बड़ी कंपनी बायकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शॉ खुद ट्वीट कर बता रही थी कि मैं साफ करना चाहती हूं कि बायकॉन ने जनता दल सेक्युलर या किसी अन्य पार्टी को एक नया पैसा चंदा नहीं दिया है। निजी स्तर पर मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं जिसे जेडीएस और अन्य दलों को दिया है। मेरा चंदा मामूली है और पूरी तरह सफेद पैसा है। जब इतनी बड़ी कंपनी की संस्थापक खुद बता सकती हैं, तो बाकी कंपनियों को बताने में क्या दिक्कत है? बायकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, डायबिटीज, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाती है। 16,500 कर्मचारी काम करते हैं। क्या अब भी आपको संदेह नहीं हो रहा है कि कंपनियां क्यों नहीं बताना चाहती हैं? प्रशांत भूषण ने यह बात उठाई कि चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे से जो जानकारी दी है उसमें बड़े दलों ने नहीं बताया कि किस किस से चंदा मिला है, केवल छोटी पार्टियों ने बताया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रशांत भूषण ये सब बातें मीडिया में छपने के लिए कह रहे हैं, इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा है। प्रशांत भूषण की मांग थी कि अप्रैल 2019 से पहले की जानकारियां सार्वजनिक की जाएं, उसे कोर्ट ने नहीं माना। बेंच ने कहा कि आपने एप्लीकेशन फाइल की है, हमने माना, लेकिन हमने उस समय सोच समझकर यह फैसला लिया था कि अंतरिम आदेश से पहले की जानकारी पर फैसला लागू नहीं होगा। अप्रैल 2019 के बाद के आदेश में सबको नोटिस भेज दिया गया कि इस मामले में फैसला आएगा, अब अगर उसमें बदलाव किया जाएगा तो फिर से फैसले की समीक्षा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सारी जानकारी देनी होगी। 21 मार्च की शाम 5 बजे तक चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोर्ट में हलफनामा दायर करना होगा कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी की सभी चुनाव आयोग को दे दी गई है और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है, रोकी नहीं गई है। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही जानकारियां आती हैं चुनाव आयोग उसे प्रकाशित करे। आप सरकार से किसी योजना में लाभ प्राप्त करते हैं, आपका चेहरा, आपका नाम सब जगह सार्वजनिक हो जाता है, फोटो छप जाता है विज्ञापन में, प्रधानमंत्री उसे लाभार्थी कहते हैं, लाभार्थियों का सम्मेलन होता है, वीडियो बनता है, राजनीतिक दलों ने किस किस से चंदा लिया, क्या इसकी जानकारी उन्हें नहीं होनी चाहिए और उन्हें नहीं देनी चाहिए? चंदा देने वाली कंपनी को एक सम्मेलन करना चाहिए। उनके चंदे का सबसे नियमित और सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, रेड के बाद का लाभार्थी कौन है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद का लाभार्थी कौन है? क्या आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं? हमारा सारा का सारा वीडियो देखिए। आज का यह 11वां वीडियो है, 12वां वीडियो भी जल्दी लेकर हाजिर होते हैं, इंतजार कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।